मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 2 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि हाथी कैसा होता है, तो जो भी व्यक्ति आप में से हाथी के बारे में जानते हैं, उन्होंने हाथी को देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों, भले ही ना सही लेकिन इस तरह से तो हाथी के स्वरूप की चर्चा कर ही देंगे जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हां हाथी ऐसा होता है। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जिससे मैं हाथी के बारे में पूछ रहा हूं लेकिन उसने हाथी देखा नहीं है, या उसकी समझ में हाथी का मतलब बकरी है, तो अब जब वह स्वरूप की चर्चा करेगा, हाथी के स्वरूप की चर्चा करेगा, तो बट नेचुरल है कि वह बकरी की चर्चा कर रहा होगा और उसे ऐसा लग रहा है मानो कि वह हाथी के बारे में ही बता रहा है और अपने आप में वो 100% कन्फर्म भी है, पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ वह अपनी बात कह रहा है। अब यहां गड़बड़ी कहां हुई, आप देखिए, गड़बड़ी केवल एक छोटी सी चीज में हुई है, बड़ी चीजों में गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल एक छोटी सी चीज में। और वो छोटी सी चीज यह थी कि हाथी का मतलब उसके दिमाग में बकरी से था, यानी कि हाथी का जो सही अर्थ होना चाहिए वह उस सही अर्थ से अनजान था। उसे लग रहा था कि बकरी को ही हाथी कहा जाता है, तो अपने लेवल पर तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आंसर दे रहा है। अगर उससे कहा जाए कि हाथी से बचाव तुमको करना है, उससे बचकर रहना है, तो आप देखिए उसे लगेगा कि यार बकरी से ही तो बचकर के रहना है, तो उससे कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर उसके दिमाग में हाथी की सही तस्वीर है तो स्वाभाविक है कि फिर वह उसी तरीके से तैयारी करेगा अपने बचाव के लिए। इसका मतलब है कि हाथी को बकरी समझ लेने के कारण आप देखिए कि हाथी से जुड़ी हुई सारी जितनी भी उसकी चेष्टाएं हैं, सोच हैं, एक्शन, सारी की सारी बदल जाएंगी। और यह बदलाव सिर्फ एक कारण से हुआ है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके जो परिवर्तन होते हैं और जो परिवर्तन के परिणाम होते हैं वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी भयानक हो सकते हैं। और वो कारण क्या है कि उसने हाथी को बकरी समझ लिया। देखिए, हालांकि मैंने बहुत ही सामान्य सा उदाहरण दिया है, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जितना सिंपल एग्जाम्पल होगा उतनी ही शायद मेरी बात आपके ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये बात मैं आपसे कह क्यों रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। रीजन यह है कि पिछले सप्ताह मैं यहां कि मैं भोपाल की एक प्रशासनिक एकेडमी है, सभी राज्यों में प्रशासनिक एकेडमी हुआ करती हैं जिसमें उस स्टेट के आईएएस ऑफिसर्स या जो स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं या और भी जो दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। उसमें मैं एक लेक्चर देने के लिए गया था और उस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के 500 प्रिंसिपल्स, लगभग 500 प्रिंसिपल्स आए हुए थे, और ये प्रिंसिपल्स जो हैं 12th तक की जो क्लासेज होती हैं उन स्कूलों के थे। देखिए, मेरी बात को आप लोग बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं यहां किसी की आलोचना कर रहा हूं, किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल अपने एक अनुभव की, या कह लीजिए उस अनुभव की चर्चा कर रहा हूं जिसको आधार बना करके हम अपने लिए शायद कुछ सही तरीका निकाल सकें, अपने आप को ज्यादा सतर्क कर सकें। मेरा जो विषय था उनके साथ बातचीत करने का वो कुछ इस तरीके का था कि कुछ मोटिवेशनल बात की जाए ताकि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने स्कूलों को बेहतर बना सकें, टीचर्स जो उनके यहां काम करते हैं उनको अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें, एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके, इस तरह को आप कह लीजिए बेस बनाकर मुझे कुछ प्रेरणास्पद बातें करनी थी, राइट? अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने एक प्रश्न किया, अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रश्न ये किया कि आइए हम पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं जो प्रेरणा के रास्ते में बाधा बनती हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो मैंने यह प्रश्न उन्हीं से किया। जब मैंने उनसे यह प्रश्न किया तो उन्होंने अपनी तरफ से उत्तर दिए, उत्तर देने शुरू किए। अब वो जो उत्तर दे रहे थे वो कुछ इस तरह के उत्तर थे किसी का कहना ये था कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, टीचर्स नहीं है, किसी का कहना था कि सुविधाएं उस तरह की स्कूलों में अवेलेबल नहीं है, किसी का कहना यह भी था कि टीचर्स के को दूसरे दूसरे काम सौंप दिए जाते हैं तो उसके कारण वो पढ़ाई के लिए और अपनी व्यवस्थाएं देखने के लिए पूरा समय स्कूलों को नहीं दे पाते, ये उनकी बातें थी। नो डाउट कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे और शिक्षा जगत में ये सारी परेशानियां हैं। लेकिन यहां जो मैं मूल बात आप सबसे करना चाह रहा हूं वो ये कि अब देखिए कि मैंने जो प्रश्न किया था वह था कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें प्रेरित होने से रोकती हैं, लेकिन जो उत्तर दिए जा रहे थे उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो व्यवस्था संबंधी बातें की जा रही हैं, सुविधाओं से संबंधित बातें की जा रही हैं कि टीचर्स का न होना व्यवस्था करना होना है, टीचर्स को दूसरे काम में लगा देना एक सिस्टम की बात है, एक प्रणाली की खामी की बात की जा रही है। अब यहां जो मुझे बात लगी और जिसको मैंने वहां उठाया भी वो ये है कि देखिए प्रेरणा और सुविधाओं के अंतर को हमें समझना होगा। बेसिकली जो प्रेरणा है वो एक आंतरिक तत्व है, प्रेरणा किसी सुविधा के मोहताज नहीं होती। इनफैक्ट सच पूछिए तो प्रेरणा उस समय और ज्यादा बलवती होती है, और ज्यादा ताकतवर होती है जब सुविधाओं का अभाव होता है। वह तो हमारे अंदर से उठने वाली एक ऐसी तरंग है, या कह लीजिए कि ऊर्जा की एक ऐसी जबरदस्त लहर है, एक गुबार है, जब हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो चीजें नहीं है, लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन सारे के सारे ऑड सिचुएशन के बावजूद ये जो पूरी की पूरी विरोधी शक्तियां मुझे चारों ओर से घेरी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ कर ले जाऊंगा। इसीलिए आप देखिए कि जो किस्से कहानियों के जो आधार बनते हैं, या अभी आपको बहुत से ऐसे लोगों के बारे में अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा कि ऑटो रिक्शा इनके पिता चलाते थे लेकिन ये आईएएस बन गया, इनके पिता मिस्त्री थे लेकिन ये आईएएस बन गया, इनके पिता पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे लेकिन उनका बेटा आईएएस बन गया, उनकी बेटी ने ये कर लिया, इस तरह के आप किस्से सुन रहे हैं। जितनी भी चीजें आप पे पढ़ रहे हैं आप उनमें दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से पाएंगे। नंबर वन कि इनकी परिस्थितियां इनफैक्ट सही मायने में इसके लिए इन्हें अलाउ नहीं कर रही थी कि ये इतना बड़ा काम कर सके, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं थी कि वो दिल्ली जाकर के या और किसी बड़े शहर में जाकर के लाख दो लाख रुपए खर्च करके कोचिंग कर सकें, दूसरी सुविधाएं जुटा सकें। वो नौकरी भी करते थे, पैसा भी कमाते थे, घर का खर्चा भी चलाते थे, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कर लिया। उनका परिवार अशिक्षित था, वहां तो कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, इसके बावजूद उसने ऐसा कर लिया। यानी कि जो चीजें चाहिए वो चीजें उनके पास नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने किया। तो उसके बावजूद उन्होंने किया तो वो कौन सी चीज थी जिसने कराया, और जिसने कराया उसे ही दोस्तों हम कहते हैं प्रेरणा, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, या यूं कह लीजिए कि आंतरिक एक ऐसी जरूरत जो हमें महसूस होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने जो अपने लिए विषय चुना था वो यही कि जब तक हम शब्दों के सही अर्थ को नहीं समझ पाते, उसके सही अर्थ को पकड़ नहीं पाते, तब तक सही मायने में हम अपना एक्शन भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि शब्दों के सही अर्थ को समझने के बाद ही हमारे एक्शन सही हो सकते हैं, अदरवाइज तो फिर हम काम करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम सही चीज को सही तरीके से समझ करके सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।